नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ईरान से शाये होने वाले रोज़नामा तेहरान इमरोज़ की कुछ अहम सुर्खियों से। हिजबुल्ला हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहेगी, सैयद हसन नसरुल्ला। बहरीन में नाम नेहाद इस्लाहात, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सख्त तनकीद की। मुर्सी की हिरासत के एक महीने बाद भी मिस्र में मुजाहरे जारी। नाज़रीन रोज़नामा तेहरान इमरोज़ ने अपनी सुर्खी सभी धड़े नई हुकूमत की मदद करें कायद इनकलाब इस्लामी के ज़ैल में लिखा है। ईरान के सातवें सदर के ओहदे की तौसीफ की शानदार तकरीब सनीचर की शाम हुसैनिया इमाम खुमैनी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर अपनी तकरीर में कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनई ने कहा कि ईरान का इस्लामी निज़ाम एक कामयाब दीनी जमहूरी निज़ाम है। उन्होंने कहा कि दीनी जमहूरियत और इस्लामी जमहूरिया में आवाम तमाम मसाइल में कलीदी किरदार के हामिल हैं। कायदे इनकलाब इस्लामी ने मिल्लत ईरान के खिलाफ दुश्मनों की पाबंदियों के बारे में कहा कि पाबंदियों के दौरान मिल्लत ईरान और हुक्काम ने अहम तजर्बात हासिल किए हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनई ने कहा कि पाबंदियाँ ऐसा सबक हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क की दाखिली तवानाइयों पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक ईरान की इल्मी और साइंसी पेशरफ को रोकने में नाकाम रहे हैं। मिस्र के हालात और आलमी खिलाड़ी। नाज़रीन ये उनवान है तेहरान इमरोज़ के एक मज़मून का, मुलाहज़ा फरमाइए अहम इक्तबासात।
मिस्र में बगावत के बाद बदअमनी जारी रहने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि हालात पर काबू के लिए आलमी खिलाड़ियों की कोशिशों में इजाफा हुआ है। आजकल मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकार मुसलसल मिस्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे हालत में जब ये महसूस हो रहा है कि मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के हामियों ने थोड़ी नरमी दिखाई है और इख्तदार के बगैर ही मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के दीगर रहनुमाओं की रिहाई पर ही इक्तफा करने पर तैयार हो गए हैं, लेकिन तहरीर स्क्वायर पर इकट्ठा होने वाले फौज के हामी इख्वानुल मुस्लिमीन को मिस्र के सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर हटाए जाने के ख्वाह हैं, और ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि दोनों फरीकों के मौकफ में से कोई दरमियानी रास्ता निकल सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के हालात से मुतालिक ममालिक भी छोटे पैमाने पर और मामूली सी बातों के लिए एक दूसरे से तनाज़ा कर रहे हैं। सऊदी अरब और कतर, जो सल्फी और मुर्सी के सबसे बड़े हामियों में शुमार होते हैं, मुर्सी की रिहाई और आज़ाद इंतखाबात के इनेकाद के ख्वाह हैं, और उन्हें उम्मीद है कि अपनी दौलत से मिस्र के इंतखाबात पर असर अंदाज हो जाएंगे। लेकिन इस बार इंतखाबात में सल्फी तंजीमों का पल्ला इख्वानुल मुस्लिमीन से ज़्यादा भारी रहेगा, और ये दरअसल इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से सल्फियों से इत्तेहाद की मजबूरी का नतीजा है। दूसरी तरफ मगरबी मुल्क जमहूरियत, जिसकी मोहम्मद मुर्सी अलामत हैं, और लिबरलिज्म के दरमियान, जिसके हामी फौजियों के साथ सड़कों पर नजर आते हैं, फंसे हुए हैं। दाखिली हालात के बरखिलाफ आलमी सतह पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मिस्र के बारे में ज्यादा लचक पाई जाती है, और अगर दाखिली तौर पर हालात कबल अज वक्त इंतखाबात की समत बढ़े तो इख्वान और सल्फियों के अरब हामी मुखालिफत नहीं करेंगे। लेकिन असल नुकता यह है कि मगरब मिस्र के हालात के सिलसिले में उस वक्त तक ही समझौता करेगा जब तक इसराइल की सलामती के लिए खतरा नहीं होगा, और इसराइल के लिए खतरा पैदा करने वाली हर तब्दीली पर मगरबी मुल्क फौरी रद्द अमल जाहिर करेंगे।
नाज़रीन ये था रोज़नामा तेहरान इमरोज़ का एक मजमून। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन आइए चलते हैं नई दिल्ली स्टूडियो, जहां हमारे साथी अतर सईद हिंदुस्तानी अखबारात का जायजा पेश करने के लिए तैयार हैं। जी अतर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेहरान स्टूडियो से शुक्रिया के साथ नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायज़ा लेकर हाजिर खिदमत हूँ मैं अतर सईद। नाजरीन, दिल्ली से आज शाये हुए बेशतर उर्दू अखबारात ने हसन रूहानी के ओहदा संभाल लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को सुर्खी देते हुए लिखा है, हसन रूहानी ने ईरानी सदर का ओहदा संभाल लिया। नाजरीन, रोजनामा इनकलाब की दीगर अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं, बैतुल मुकद्दस की तारीखी दीवार की तर्ज पर अलामती दीवार का इफ्तिताह, हिंदुस्तानी खून असलखाने के करीब खुदकुश कार बम धमाके, 9 अफराद हलाक। नाजरीन, रोजनामा इनकलाब में हकीम सराजुद्दीन हाशमी का एक मुरासला शाये हुआ है, उनवान है, आलमी सतह पर अमरीका कोई मसला हल नहीं होने देगा। मुरासला निगाह लिखते हैं कि इसराइल और फलस्तीन का मसला बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका की सियासी हिकमत अमली के बाइस ये मसला किसी भी सूरत में हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तकरीबन 2 साल के तआतुल के बाद इस मस्कूरा मसले के सिलसिले में फिर अमेरिका ने अपनी आँख खोली है और अमेरिका के वजीर खारजा इस मसले को हल करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन नजर आ रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो खामोशी रही है वो भी अमरीका की अपनी सियासी हिकमत अमली थी। हमास ने साफ अल्फाज में अमेरिका के बारे में ये भी कहा है कि उसका हर अमल अपने मफादात पर मबनी होता है और उसकी इस मस्कूरा मसले को हल करने की जो कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इसराइल की मर्जी के मुताबिक ही तमाम शराइत को मंजूर करेगा और ऐसी सूरत में फलस्तीन को हर तरह से नुकसान ही नुकसान होगा। मुरासला निगार आगे लिखते हैं कि दीगर मुस्लिम ममालिक में इस वक्त सिर्फ अमरीका की दरपर्दा सियासी हिकमत अमली के बाइस हज़ारों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अभी नामालूम कितने मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, ये सब अमरीका की ही देन है। और आई नाजरीन, अब नजर डालते हैं रोजनामा सहाफत की सुर्खियों पर। मनमोहन ने अपोजिशन से मांगा तआवुन, मानसून इजलास पीर से, अमरीका का जासूसी सर्वर दिल्ली के करीब कर रहा है काम, फलस्तीन की आज़ादी अवलीन तरजीह, हसन नसरुल्ला। नाजरीन, रोजनामा सहाफत में नायाब हसन काजमी का एक मजमून शाया हुआ है जिसका उनवान है, खून सद हज़ार अंजुम से होती है सहर पैदा। मजमून निगाह लिखते हैं कि मुर्सी को जो मिस्र मिला था वो माशी बहरान के साथ सियासी इफलास से भी कर रहा में ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने इदारे में बढ़ा। अमेरिका के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक चीन, रूस, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, दीगर अफ्रीकी ममालिक तक वसी करने की तरफ पहल की। इसके अलावा दुनिया के वाहिद दहशतगर्द इसराइल से अपने ताल्लुकात महदूद से महदूद तक कर, जबकि मुर्सी ने नया इस्लाह तहजीब व मुआशरत को अपनाने का सरही फरमान जारी किया। मोहम्मद मुर्सी के ये तमाम इकदाम न सिर्फ मिस्र बल्कि वहां के एक एक फर्द के लिए इंतहाई मुफीद और नफा बख्श थे। मजमूनिगार आगे लिखते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि मिस्र माशी और सियासी सतह पर खुद कफील हो और ना ही वो ये चाहता है कि मिस्र और मिस्री आवाम पर इस्लामी मिजाज का गलबा हो। और आई नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा कौमी सलामती की अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों में शिया और सुन्नी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश, संघ परिवार की नई हिकमत अमली, पाक सदर ममनून हिंदुस्तानियों के दर्द को समझें, सलमान खुर्शीद, मालेगांव बम धमाका, इकबालिया बयान, मुलजमीन से जबरन हासिल किया गया, नई फर्द जुर्म ने साबिका तहकीकती एजेंसियों की रिपोर्ट को गलत करार दिया। नाजरीन, रोजनामा कौमी सलामती में नजमुल हसन अंसारी का एक मजमून शाये हुआ है जिसका उनवान है, मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं मुसलमान। मजमून निगार लिखते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास बे इंतहा मसाइल हैं, इन मसाइल पर मिल्लत का हर एक फर्द न सिर्फ ख्यालात का इजहार कर रहा है बल्कि तशवीश में भी मुबतला है। कहा जाता है कि उम्मत मुस्लिमा के पास गुर्बत, मुफलिसी, जिहालत, गुमराही और मुस्तकबिल की जानिब से नाउमीदियां हैं। इस नाउमीदी में किसी सियासतदान, किसी आलिम, किसी पेश इमाम, किसी दानिश्वर की जानिब से कोई प्रोग्राम पेश किया जाता है तो इससे कुछ मुसलमानों की उम्मीदें जागती हैं और तरक्की के कुछ इम्कानात नजर आते हैं, आवाम उनके पीछे चलने लगते हैं, नतीजा ढाक के वही तीन पात। फिर वैसे हिंदुस्तानी उम्मत मुस्लिमा की हालत इस शेर के मिज़दाक है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। अगर गौर किया जाए तो ये एक बड़ी सच्चाई और हकीकत है कि तमाम सियासी आफत, फिरकावाराना फसादात, अक्सरियत की जानिब से उन्हें कुचलने की, दबाने की कोशिशें और तफरी مسلمانوں نے گزشتہ 5 دہائی مجموعی اعتبار سے کئی بڑی اور اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ دیگر بات ہے کہ مجموعی اعتبار سے آبادی کی شرح کے اشاریہ کے مطابق ان کی ترقی کی شرح، ترقی و تعلیم کا معیار اکثریت کے کچھ مخصوص ذات والوں سے آگے نہیں نکل سکا یا ان کے مقابل نہیں ہو سکا۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستانی مسلمان ہر ایک اعتبار اور پہلو سے کمزور ہیں۔ ہاں، مسلمانوں میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، پسماندگی ہے، لیکن پوری قوم کی پسماندگی بیک وقت دور نہیں کی جا سکتی۔ ان کی غربت اور مفلسی کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک مکمل سسٹم اور جامع رابطہ اصول کے تحت ان کے طرز تھوکتی ہے۔ نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ مسلم سیاستدانوں، صنعتکاروں و دولت مند طبقہ اور علماء اکرام کے درمیان کوئی ربط، تعلق، اتحاد اور اتفاق نہیں۔ ان کے پاس تعلیم نہیں، دولت ہے، لیکن قوی فلاح و بہبود کا جذبہ نہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ کا بہت بہت شکریہ اطہر سعید۔ ناظرین، پروگرام کے حصے میں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی کی توثیق کے بعد ڈاکٹر روحانی نے ملک کی باگ ڈور سنبھالی۔ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری مذاکرات کے امکان کو ختم کر دے گی، امریکی ذرائع ابلاغ۔ شام میں شیعہ مسلمانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی بحرین میں ہنگامی حالات کے نفاذ کا خدشہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ بحرین میں 14 اگست کو عام مظاہرے کی کال سے حکومت کے خوف کے پیش نظر حکومت مخالف تنظیم الوفاق نے کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے۔ بحرین میں حکومت مخالف محاذ کی سب سے بڑی تنظیم الوفاق کی رکن رملہ عبدالحمید نے العالم ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ 14 اگست سے پہلے آل خلیفہ حکومت ملک میں ہنگامی حالات نافذ کریں گے۔ حفاظتی انتظام انتہائی سخت کر سکتی ہے۔ تاہم 14 اگست کو تحریک نافرمانی کے آغاز اور پورے ملک میں مظاہروں کے ساتھ ہی ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ یاد رہے کہ 14 اگست کے قریب بحرین کی حکومت نے مظاہرین کے خلاف تشدد میں شدت پیدا کر دی ہے۔ ناظرین، روزنامہ کیہان نے تیل کو ہماری ضرورت عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
کا بل امریکی کانگریس میں منظور کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں کچھ باتوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندی یا پابندی میں شدت ایران کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور 3 عشروں کے دوران اس دشمن نے ایرانی عوام پر 170 قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے دشمن سے دشمنی اور جرم کے علاوہ کوئی امید بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی سرشت ہے سرشت میں ہے کہ اور ہمارے ملک یا ایران میں اقتدار میں تبدیلی کی وجہ سے امریکہ کے اس رویے میں تبدیلی کی امید حماقت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 30 برسوں کے تجربات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ دشمن کے سامنے ایک قدم کی بھی پسپائی اسے جری کر دے گی، اور استقامت ہی اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور یہ جو دشمن نے تیل کو نشانہ بنایا ہے وہ ہماری معیشت میں تیل کی اہمیت کی علامت ہے۔ ہماری معیشت تیل پر ٹکی ہوئی ہے، اور دشمن کی نظر میں ہماری یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی معیشت کو تیل سے الگ کرنا چاہیے، اور تیل اور ہماری معیشت کا تعلق ایسا ہو جیسا کہ قائد انقلاب نے کہا تھا کہ ہم جب بھی چاہیں تیل نکالنا بند کر دیں۔ اگر ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس کے لیے قائد انقلاب اسلامی کے فرمان پر عمل بہت ضروری ہے، اور نو منتخب صدر کو وزراء، خاص طور پر وزیر پیٹرولیم کے انتخاب کے موقع پر ان حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
ناظرین، یہ تھا روزنامہ کیہان۔ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां हमारी साथी तफसीर ज़हरा मुंतज़िर हैं पाकिस्तानी अखबारात के साथ।
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद स्टूडियो में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी हालात से आपको बाखबर करेंगे और आज के जायजे का आगाज करेंगे रोजनामा नवाई वक्त से इंतखाब करदा चंद अहम सुर्खियों से। बारिश ने कराची डबो दिया, एमरजेंसी नाफिज, मुल्क के दीगर इलाकों में मजीद तबाही, हलाकतें 45 हो गईं। भारतीय जासूस तैयारा पाकिस्तान हदूद में घुस आया, पाक फिजाइया की हरकत में आने पर भाग निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम का इस्तीफा मंजूर। नाज़रीन, रोजनामा नवाई वक्त से इंतखाब करदा मकाले को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसका उनवान है कौमी इदारों में सरबराहों की तैनाती। मकाला निगार सरवर मुनीर राव तहरीर करते हैं। कौमी इदारे किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुल्क की सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम ना होने और तसलसुल आमरियत के शिकंजे और कमजोर जमहूरियत ने कौमी इदारों की मकसदियत का रुख इज्तमाही बेहतरी की बजाय इंफरादी और गरोही मफादात के तहफ्फुज़ की तरफ मोड़ दिया। तहरीर करते हैं कि 66 साल गुजरने के बावजूद हमारे अक्सर इदारे अब भी कौमी तकाजों के मुताबिक मुस्तहकम नहीं हो सके। तहरीर करते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क से करप्शन के खात्मे को एजेंडे में खसूसी तरजीह दी है। उन्होंने बार बार कहा कि हम बददियानत अफराद को निकाल कर अच्छे और दयानतदार लोग लाएंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि माजी में करप्ट तरीन अफराद को सरकारी इदारों में लगाया गया, ये लोग करोड़ों रुपए रिश्वत देकर इन महकमों में तैनात हुए। आखिर में तहरीर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इदारों के सरबराहों के इंतखाब के लिए शफाफ तरीकेकार इख्तियार करने के लिए एक आला इख्तियाराती कमीशन की तश्कील की है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक खुद मुख्तार सरकारी इदारों और कारपोरेशनों के सरबराहान और चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव और तकर्रिया किया करेगा। वफाकी टैक्स मुतहसिब अब्दुल रऊफ चौधरी इस कमीशन के सरबराह होंगे। नाज़रीन, अब कुछ अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे रोजनामा जंग से। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की जेलों पर हमलों में अलकायदा मुलव्वस हो सकती है, इंटरपोल आलमी वार्निंग जारी। आर्मी चीफ के तकर्री, वजीर आजम का जवाबदारी इख्तियार है ममनून हुसैन। हसन रूहानी ईरान के सदर बन गए, इसी खबर से मुतलिक आपको मजीद आगाह करें कि तेहरान ईरान के 9 मुंतखब सदर हसन रूहानी रहबर आला आयतुल्ला खामनाई की तौसीक के बाद महमूद अहमदी नयाद की जगह बाकायदा तौर पर ईरान के सदर मुंतखब हो गए। हसन रूहानी अपने ओहदे का बाकायदा हलफ आज उठाएंगे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक इदारे को जो कि रोजनामा जंग में शाया किया गया है। इदारे का उनवान है अदलिया का एहतराम सब पर लाजिम। इदारे में तहरीर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत करते हुए इनकी जानिब से दाखिल किए गए जवाब को मुस्तरद करते हुए मुनासिब जवाब 28 अगस्त को दोबारा दाखिल करने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान ने तौहीन अदालत नहीं की और ना ही ऐसा सोचा है। इनका कहना था कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से शिकायत थी, तहम सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए एक लफ्ज अदलिया की तौहीन करने के मुतरादिफ है। तहरीर करते हैं कि अदलिया अदालत उस्मा ने उन्हें दोबारा जवाब देने की मोहलत दी है, जबकि इमरान खान ने अदालत के बाहर सहाफियों से बातचीत करते हुए यही मौकफ इख्तियार किया है कि उन्होंने अदालत की तौहीन नहीं की। तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना है कि उन्होंने अदलिया के वकार और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो कि इनका कहना दुरुस्त है। उन्होंने अदलिया की बहाली के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी और इस तहरीक में कैद भी काटी। तहरीर करते हैं कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और उसका एहतराम सब पर लाजिम है, खासतौर से इमरान खान जैसे कदाब और रहनुमा पर इसकी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदालत उज़्मा के एहतराम वकार के हवाले से जबान में मोहतात जबान इस्तेमाल करें और कानून की बालादस्ती के लिए काम करें। नाज़रीन, अब कुछ अहम खबरें रोजनामा और साफ से। महाजरीन को ईद पर गुजारा अलाउंस देने का हुक्म, खुद साख्ता बहरान पैदा करने वालों के हाथ कुछ न आया, अवामी खिदमत करता रहूंगा मजीद। रूसी कंपनी का बिजली घरों को कोयले पर मुंतकिल करने में दिलचस्पी का इजहार। तवानाई सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार, सैलाब मुतासरीन की जानो माल का तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाए, शहबाज शरीफ। ناظرین امریکی خطرے میں کے عنوان سے روزنامہ اور صاف سے انتخاب کردہ اداری کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اداری میں تحریر کیا گیا ہے کہ آج بحرین، اسرائیلی، اردن، کویت، لیبیا، عمان، قطر، سعودیہ عرب، یمن، افغانستان اور بنگلہ دیش میں امریکی سفارت خانے بند رکھے جائیں گے، جن کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ القاعدہ اور ان کے ہم نوا تنظیموں کی طرف سے امریکیوں پر حملے کا خطرہ ہے اور امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کے حوالے سے محتاط رہیں کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے کہ جب امریکہ اپنے شہریوں کو سفری وارننگ جاری کرتا ہے تو یہ ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر ہوتی ہے یا اس طرح امریکی انٹیلیجنس ادارے امریکی قوم کو بے وقوف بنا کر انہیں یہ جتاتے ہیں کہ ان کی دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا علم بہت اہم ان کو دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا علم ہے اور وہ حفظ ماتا قدم کے طور پر جو کچھ کرتے ہیں ان کی وجہ سے کئی امریکیوں کی جان بچ جاتی ہے. تحریر کرتے ہیں کہ پھر درجنوں ملکوں میں سفارت خانے بند کر کے ان ملکوں پر دھاک بیٹھتی ہے کہ امریکی کتنے باخبر ہیں اور انہیں آنے والے خطرات کی چوب بھی سنائی دیتی ہے اور وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. آخر میں تحریر کیا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ خطرے کی نوعیت سنگین ہے لیکن کس طرح سنگین ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. واپس چلیں گے تہران اسٹوڈیو اگلے پروگرام تک کے لیے. اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بہت بہت شکریہ آپ کا تفسیر زہرا. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین پروگرام کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے بین الاقوامی میڈیا سے منتخب کیے گئے کچھ کارٹون.